रविवार 28 अगस्त दिन भर के सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात, कश्मीर की चर्चा में कहा कोई भी मरे तो नुकसान भारत का।
गांव के प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक का मत है कि कश्मीर में अगर कोई भी जान जाती है, चाहे वह किसी नौजवान की हो या किसी सुरक्षा कर्मी की हो, ये नुकसान हमारा ही है।
उत्तर प्रदेश में बीएसपी प्रमुख मायावती ने विरोधी दलों पर लगाए आरोप। बिहार में लोग बाढ़ और सूखे से परेशान, लेकिन नेताओं को राजनीति से फुर्सत नहीं। और संडे दिनभर में आज खास मुलाकात अभय देओल से।
लार्ज देन लाइफ जब भी मैंने कुछ देखा या पढ़ा मुझे वो अच्छा नहीं लगा है। यू नो हीरो 10-20 लोगों को मार के हीरो।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कश्मीर की समस्या का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सभी पार्टियों ने दिखा दिया है कि एकता में कितनी ताकत होती है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में चाहे किसी नौजवान की जान जाए या किसी सुरक्षाकर्मी की, ये नुकसान देश का ही है। मध्य इटली के भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित दो कस्बों में एक बिशप ने मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना सभाएं की हैं। बिशप जोवानी अकोले ने इतालवी लोगों से त्रासदी के समय में एकजुट होने का आह्वान किया है। वहीं रोम में रविवार की प्रार्थना सभा में बोलते हुए पोप फ्रांसिस ने कहा कि वो भी जल्द ही प्रभावित इलाकों में जाएंगे। उन्होंने कहा, प्यारे भाइयों बहनों, मैं जल्द से जल्द आपके पास आकर आपसे मिलना चाहता हूं, ताकि मैं व्यक्तिगत रूप से आपको धर्म के आपके साथ होने का एहसास दे सकूं, एक पिता और भाई की तरह आपको गले लगा सकूं। ये थे पोप फ्रांसिस के शब्द। सीरिया पर नजर रखने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तरी सीरिया में तुर्की की बमबारी में कम से कम 35 नागरिक मारे गए हैं। ब्रिटेन स्थित संगठन सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि जेब अल कुसा नाम के गांव पर हवाई हमले में 20 लोग मारे गए और 50 घायल हुए। वहीं अल अमारना के नज़दीक हुए एक अन्य हमले में 15 लोगों के मारे जाने की रिपोर्टें हैं। तुर्की की सेना का कहना है कि हवाई हमले में 25 चरमपंथी मारे गए हैं। सेना के मुताबिक मारे गए लोग कुर्द समूहों पीकेके और YPG से जुड़े थे। तुर्की के टैंकों और सैनिकों ने हाल ही में उत्तरी सीरिया में घुसपैठ की है और ये इस्लामिक स्टेट और कुर्द समूह YPG से लड़ रहे हैं। कुर्द मिलिशिया YPG को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। जर्मनी के वित्त मंत्री सिगमार गैब्रियल का कहना है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए चल रही वार्ता नाकाम हो गई है। गैब्रियल, जो जर्मनी के वाइस चांसलर भी हैं, ने कहा कि यूरोपीय लोगों की अमरीकी मांगों के आगे न झुकने के कारण ये वार्ता नाकाम हुई। उनका कहना है कि 14 दौर की वार्ता में कोई भी पक्ष वार्ता में चर्चा किए गए 27 अध्यायों में से किसी एक पर भी सहमत नहीं हो सका। इराक के विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब से बगदाद से अपना राजदूत वापस बुलाने के लिए कहा है। इराक के शिया राजनेता राजदूत थामिल अल शबान को वापस भेजे जाने की मांग कर रहे थे। शबान ने एक टिप्पणी में कहा था कि इराक के मामलों में ईरान का दखल है और ईरान समर्थित शिया मिलिशिया सुन्नियों के साथ तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले सप्ताह इराकी अधिकारियों ने राजदूत के मारे जाने की साजिश की मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिन भर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ हूं मैं, निखिल रंजन। आज अगस्त महीने का आखिरी इतवार है और प्रधानमंत्री एक बार फिर मन की बात करने के लिए रेडियो पर आए। और आज मन की बात में वैसे तो उन्होंने ओलंपिक, GST और संक्षेप में ही सही बाढ़ की भी चर्चा की, लेकिन सबसे प्रमुखता से उन्होंने कश्मीर की बात की और कहा कि जब भी कश्मीर में किसी की मौत होती है तो नुकसान देश का होता है।
कश्मीर के संबंध में मेरा सभी दलों से जितना इंटरेक्शन हुआ, हर किसी की बात में से एक बात जरूर जगते होती थी। अगर उसको मैंने कम शब्दों में समेटना तो मैं कहूंगा एकता और ममता, ये दो बातें मूल मंत्र में रही। और हम सभी का मत है, 125 करोड़ देशवासियों का मत है, गांव के प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक का मत है कि कश्मीर में अगर कोई भी जान जाती है, चाहे वह किसी नौजवान की हो या किसी सुरक्षा कर्मी की हो, यह नुकसान हमारा ही है, अपनों का ही है, अपने देश का ही है। जो लोग इन छोटे छोटे बालकों को आगे करके कश्मीर में अशांति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, कभी न कभी उनको इन निर्दोष बालकों को भी जवाब देना पड़ेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, देश बहुत बड़ा है, विविधताओं से भरा हुआ है। विविधताओं से भरे हुए देश को एकता के बंधन में बनाए रखने के लिए नागरिक के नाते, समाज के नाते, सरकार के नाते हम सबका दायित्व है कि हम एकता को बल देने वाली बातों को ज्यादा ताकत दें, ज्यादा उजागर करें, और तभी जाकर के देश अपना उज्जवल भविष्य बना सकता है और बनेगा। मेरा 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति पर भरोसा है।
प्रधानमंत्री ने सभी दलों से कश्मीर मुद्दे पर साथ आने और मिलकर काम करने की अपील की, और इस क्रम में जीएसटी बिल का उदाहरण देकर बताया कि किस तरह से इस मुद्दे पर संसद में एकजुटता नजर आई।
अगस्त 2016 में घोर राजनीतिक विरोध रखने वाले दल, एक दूसरे के खिलाफ एक भी मौका न छोड़ने वाले दल, और पूरे देश में करीब करीब 90 दल, संसद में भी ढेर सारे दल, सभी दलों ने मिलकर के जीएसटी का कानून पारित किया। इसका क्रेडिट सभी दलों को जाता है, और सब दल मिलकर के एक दिशा में चले तो कितना बड़ा काम होता है, उसका एक उदाहरण है।
कश्मीर पिछले 51 दिनों से अशांति और कर्फ्यू में है, लेकिन बीते कुछ दिनों से भारत सरकार की सक्रियता बढ़ गई है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह दूसरी बार वहां गए, दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो इन सब से क्या जल्द ही कुछ सकारात्मक होने की उम्मीद बनती है? यही सवाल मैंने पूछा श्रीनगर में वरिष्ठ पत्रकार बशीर मंजर से, तो उन्होंने कहा,
हाँ देखिए, जो पिछले दिनों से कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, फॉर इंस्टेंस प्राइम मिनिस्टर मिले यहाँ की अपोजिशन पार्टीज के साथ, फिल्म के बाद उनका बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट आया, उसके बाद राजनाथ जी दोबारा कश्मीर आए, उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बातें की, उन्होंने कहा कि बातचीत हो सकती है, हर किसी के साथ हो सकती है, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के दायरे में। के बाद प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती से मिले, वहां भी बड़ी पॉजिटिव बातें निकली। जो मन की बात में प्राइम मिनिस्टर ने रीच आउट की कोशिश की है, ये एक उम्मीद बन रही है कि शायद अब न्यू दिल्ली जो यहाँ पे हालात है उनको बड़ा सीरियसली ले रही है और कुछ कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की जा रही।
लेकिन राजनाथ सिंह की अलगाववादी जो ताकतें हैं या जो हुर्रियत के लोग हैं, उन लोगों से कोई मुलाकात नहीं हो पाई, हुर्रियत की तरफ से अब तक कोई ऐसा सकारात्मक संदेश देने की कोशिश नहीं की गई है कि वो मामले को हल करने की दिशा में कुछ कदम उठाना चाहता है। क्या आपको लग रहा है कि उनकी तरफ से अब कुछ किया जाना चाहिए?
हुर्रियत आप इतना इमीडिएटली नहीं, हम कोई भी नहीं सोचता कि इमीडिएटली वहां से राजनाथ सिंह ने बात की या प्रधानमंत्री ने बात की तो इमीडिएटली हुर्रियत की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि 50 दिन हो गए हैं और 50 दिन में अब ये बातें हो रही है, 48-47 दिन तक तो कोई बात हुई नहीं। सो मुझे लगता है कि हुर्रियत ने तमाम जो उनके ये वो तोल रही होगी किस तरह कैसे रिएक्ट किया जाए, क्यों कब रिएक्ट किया जाए, प्रॉपर टाइम कौन सा होगा। लेकिन जैसे ही बातचीत की बात होती है तो नेचुरली माहौल में एक सुधार सा आने लगता है, क्योंकि सब लोगों का यही है कि बातचीत होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि किसी स्टेज पे कुरियत भी शायद बातचीत के लिए राजी हो जाए।
इस वक्त आपको क्या लगता है शुरुआत किस तरफ से होगी?
मुझे लगता है कि शायद बैक चैनल पे कुछ हो रहा है, अभी तो कंफर्म नहीं है ये बातें, लेकिन लग रहा है कि बैक चैनल पे कहीं ना कहीं कुछ बातें हो रही है। और मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है जो होम मिनिस्टर ने कहा कि ऑल पार्टीज डेलीगेशन आ रहा है, क्योंकि ऑल पार्टीज डेलीगेशन यहाँ आती, जब पिछली बार आप 2010 का देखें ऑल पार्टीज डेलीगेशन आया था तो वो सबसे मिल पाए थे। मुझे लगता है कि ऑल पार्टीज डेलीगेशन के बाद जब वो यहाँ आते हैं, देखते हैं उनकी मुलाकातें किनसे होती हैं, उसके बाद शायद ये मिस थोड़ा क्लियर होना शुरू हो जाएगा।
अखबारों में ये चर्चा बहुत जोर पकड़ रही है कि शायद गवर्नर को बदला जा सकता है, आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा होगा?
फायदा आज की डेट में तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ ऐसी रूमर्स चल रही है कि आप देखें जो आज की एजिटेशन चल रही है, 50 दिन हो गए, इसमें लोग तो कहते हैं कि बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ, वो मारा गया, ट्रिगर वही था, लेकिन मेरा मानना है कि ट्रिगर्स बहुत सारे थे, बुरहान तो एक बहाना बन गया। उसमें जो इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स थे वो सैनिक कॉलोनी की बातें, सेपरेट पंडित कॉलोनीज की बातें, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बातें, और वो सब चीजें जो हुई थी वो गवर्नर रूल में हो गई थी जब मुफ्ती मोहम्मद सईद का देहांत हो गया था और महबूबा मुफ्ती रिलक्टेंट थी कुर्सी संभालने में, वो बीच वाला जो गवर्नर का पीरियड आया था उसमें ये 2-4 चीजें हो गई थी जो जिसकी वजह से बहुत गुस्सा ऑलरेडी लोगों में था। मुझे लगता है अगर उस हवाले से देखा जाए तो शायद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सोच रही होगी गवर्नर को चेंज करने का।
आज श्री श्री रविशंकर जो है वो बुरहान वानी के पिता से मिले हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो लोग हैं वो इसमें कुछ मदद कर सकते हैं?
मुझे लगता है जितने भी सीनियर एलिमेंट्स हैं हिंदुस्तान में उनको आगे आना चाहिए। श्री श्री का जहां तक ताल्लुक है वो पहले भी कश्मीर आए हैं और वो यहाँ के सारे सेपरेटिस्ट लीडर से मिले भी हैं, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। ये न्यूट्रल ग्राउंड पे लोग खड़े हैं जो न सरकार की तरफ से है न उग्रवादियों की तरफ से, ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं रोल बनता है।
श्रीनगर में वरिष्ठ पत्रकार बशीर मंजर।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर निखिल रंजन के साथ, और आइए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां चुनाव तो अगले साल होने हैं लेकिन राजनीतिक दलों की रस्सा कशी और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। आज बहुजन समाज पार्टी की आजमगढ़ में रैली हुई और इस दौरान बीएसपी प्रमुख मायावती ने विरोधी दलों पर जमकर आरोप लगाए। उनके निशाने पर न सिर्फ सत्ताधारी समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस और बीजेपी भी थे। बीएसपी नेता ने तो यहां तक कहा कि उनकी पार्टी का जो रिजेक्टेड माल है उसे बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है।
हाल ही में यहाँ कुछ पारिवारिक स्वार्थी व अन्य बिकाऊ लोग जो बीएसपी को छोड़कर गए हैं या निकाल दिए गए हैं, तो अब वे लोग विरोधी पार्टियों से अपने टिकट लेने के स्वार्थ में उन्हें खुश करने के लिए आए दिन यहाँ बीएसपी के ऊपर खासकर टिकट बेचने का गलत व झूठा आरोप लगाते रहते हैं
कि इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई है कि अब ये पार्टी बीएसपी के रिजेक्टेड माल को भी बिना कोई जांच पड़ताल के उन्हें बहुत आसानी से लेने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही उनके गले में अपनी वफादारी का पट्टा भी अब इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह खुद पहनाते हैं, किसको, जो बीएसपी का रिजेक्टेड माल है। इससे आप लोग यहाँ प्रदेश में बीजेपी के आए दिन हो रही दैनीय हालत का भी काफी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं।
ये थी मायावती। वैसे जुबानी जंग का ये खेल सिर्फ यूपी में ही नहीं चल रहा है, पड़ोसी राज्य बिहार भी जहां प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है वहीं नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर राज्य की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा था कि अच्छा है कि गंगा मैया आप लोगों के दरवाजे तक आईं। उधर बीजेपी ऐसे आरोपों पर कैसे चुप रह सकती थी, पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इस पर पलटवार किया। सुनिए नीरज सहाय की रिपोर्ट।
पिछले कई सालों की तरह इस साल भी बिहार को बाढ़ और सुखाड़ की दोहरी त्रासदी से गुजरना पड़ा है। पिछले 8 दिनों से बाढ़ की वजह से राज्य के 12 जिलों में 50 से अधिक लोगों की जान चली गई है। वहीं राज्य के 25 जिलों के 166 प्रखंडों में इस महीने की 15 तारीख तक 40% से कम बारिश होने की वजह से सुखाड़ जैसी स्थिति बन गई है। त्रासदी की इस घड़ी में कई केंद्रीय मंत्रियों रामविलास पासवान, राधा मोहन सिंह और रविशंकर प्रसाद आदि ने बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा किया, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद प्रमुख लालू प्रसाद समेत उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। पक्ष विपक्ष के नेताओं ने बाढ़ पीड़ित लोगों से उनके इलाके में जाकर मुलाकात की, अपनी देखरेख में राहत सामग्री बंटवाई और राहत शिविरों का दौरा भी किया। विपक्षी नेताओं ने राहत कार्यों में ढिलाई बरतने की शिकायत की, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसे पर्याप्त बताया। राजद प्रमुख लालू प्रसाद के अनुसार,
और सरकार की तरफ से भी युद्ध स्तर पर बचाव और राहत का काम शुरू हुआ और तेजी से चल भी रहा है। सब अपने का अलग घर गिरा है उसके लिए अलग, अनाज के लिए अलग, नगर नारायण लगभग अच्छी राशि लोगों को पासबुक खोल के दिया जाएगा। अधिकांश इलाका बिहार का सुखाड़ के चपेट में भी है कि मुख्यमंत्री जी को, बिहार सरकार को, वो गए थे प्रधानमंत्री जी से मिलने, बोले थे कि हम मदद करेंगे। हम नहीं समझते कि कोई मदद मिला या नहीं मिला, उम्मीद भी नहीं है कि लोग मदद करेंगे।
बाढ़ पीड़ितों की सहायता के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने दावा किया कि केंद्र ने 1965 करोड़ की सहायता भेजी है लेकिन राज्य सरकार इसे पीड़ितों तक नहीं पहुंचा पा रही है।
वह सहयोग देने के लिए तैयार है, मुख्यमंत्री जी से बात हुई प्रधानमंत्री जी की, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने आके मुख्य सचिव से बातचीत किया, पैसा रिलीज किया है 1965 करोड़ रुपए, और जो क्षति हुई है, इस क्षति का आकलन करके राज्य की सरकार केंद्र सरकार को देगी, तो उसकी क्षतिपूर्ति भी केंद्र सरकार करेगी। और राज्य की सरकार ने अभी तक कोई आकलन नहीं दिया है। इच्छा कर रहे हैं लोग कि केंद्र सरकार से हम कितना पैसा मांगे, तो जब आप मांगिएगा तब ना मिलेगा। केंद्र की सरकार कहीं पीछे खड़ी नहीं है, पीछे नहीं है।
बाढ़ सहायता पर राजनीति की उठती लहरों के बीच बाढ़ का पानी उतरने लगा है। लोग राहत शिविरों से घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि उन्हें मुसीबत के ये दिन कब तक काटने पड़ते हैं। नीरज सहाय, BBC पटना।
और आइए अब आज चर्चा करते हैं संडे दिनभर की। संडे दिनभर में आज हम आपकी एक खास बातचीत उस अभिनेता से करा रहे हैं जिनका संबंध देओल खानदान से है, लेकिन छवि हीमैन वाली नहीं है। इम्तियाज अली की फिल्म सोचा न था से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अभय देओल देवडी और ओए लक्की लक्की ओए जैसे फिल्मों के जरिए अपनी अलग पहचान रखते हैं। 2 साल के बाद वो पर्दे पर फिर से वापस लौटे हैं। फिल्म हैप्पी भाग जाएगी, इसमें वो एक पाकिस्तानी किरदार बिलाल की भूमिका में दिख रहे हैं। अभय देओल से बातचीत सुनिए आज के संडे दिनभर में, जो स्वाति बख्शी ने की है।
अभय, इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो हिंदी फिल्मों में कई तरह से एक्सप्लोर किया गया है। आपकी फिल्म मैंने अभी देखी नहीं है तो पता नहीं कि दोनों कंट्रीज़ के रिश्तों को कैसे इसमें रखा गया है, पर आप भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को खुद कैसे देखते हैं पर्सनली?
मैं बस ये देखता हूँ, कल्चरली तो हम फिर भी सेम है ना। इन 70 ईयर्स यू नॉट गोना वाइप अवे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ कल्चर। हज़ारों साल हो गए हैं बिना कोई पाकिस्तान या इवन इंडिया के। हमारी हमेशा एक हमारे किंगडम्स रहे हैं, कम्युनिटीज़ रही हैं, और एक कॉमन कल्चर रहा है उन कम्युनिटीज़ के बीच। उसका प्रभाव 60-70 ईयर्स में नहीं जाने वाला है। सो बॉर्डर फिजिकल होगा पर मेंटल बॉर्डर नहीं है, विद जस्ट सेम।
कल्चर के लेवल पर समानता की बात आपने की, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की कहानियाँ या जो फिल्में हैं वो दो देशों के बीच में रिश्तों पर किसी तरह से असर डाल सकती हैं?
आई वुड से कि हैप्पी कम्स, क्योंकि इसमें पाकिस्तान इंडिया है, लेकिन ये पॉलिटिकल भी नहीं है ना, तो ये सीरियस ड्रामा है, कॉमिक फिल्म है, दोनों देशों को लेकर, दोनों कल्चर्स को लेकर। और ये दिखाया गया है कि कल्चर तो सेम ही है, यू नो आई मीन भाषा भी सेम है, यू नो व्हाट आई मीन। उर्दू वॉज रिटन व्हेन देयर वॉज इंडिया। हम कहना चाहेंगे वो पाकिस्तान की भाषा है, बट नहीं है, इंडियन, क्योंकि क्रिएट किए गई थी इंडिया में। कलर रंग भी सेम है हमारा, सोच भी सेम है हमारी। तो इट्स नाइस कि हम दोनों कंट्रीज़ को लेकर एक लाइट फिल्म बना सकें, एक ह्यूमरस फिल्म बना सकें, क्योंकि बिजनेस और पॉलिटिक्स में वो डिवाइड हो सकता है फॉर व्हाटएवर रीजंस, आर्ट में वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। इट्स द आर्टिस्ट हु विल हेल्प ब्रिज दैट डिवाइड, क्योंकि अगेन आर्ट में कोई बाउंड्री है नहीं। आर्ट हैज़ ऑलवेज बीन अ रीज़न टू प्रोवोक, और आर्ट हैज़ बीन अ रीज़न टू यूनाइट, आर्ट हैज़ बीन अ रीज़न टू क्वेश्चन, आर्ट हैज़ नेवर बीन अ रीज़न टू डिवाइड पीपल बट टू क्वेश्चन परहैप्स।
आर्ट के लिए कोई सरहद नहीं होती है आपने कहा, तो पाकिस्तानी फिल्म का ऑफर अगर आपको आ जाए तो आप तैयार हैं उसे करने के लिए?
अगर अच्छी फिल्म हो तो क्यों नहीं।
और किसी बात पर जाएं इससे पहले आप ये बताइए कि 2 साल तक आप क्या करते रहे, इतना लंबा ब्रेक आखिर आपने क्यों लिया?
है यार, सब लोग मुझे यही पूछ रहे हैं अब। मैं मुझे बुरा लग रहा है अभी कि मैं इतना टाइम क्यों लगा लिया। देयर वाज नो पर्टिकुलर रीजन यार, हो गया अपने आप, यू नो आई सपोज ऑन वन लेवल, क्योंकि मैं सिलेक्टिव हूँ, चूजी हूँ, मैं कंपेटिटिव भी नहीं हूँ। ऐसा भी नहीं है कि कम्पीट करके प्रूव करना है कि मैं सबसे बेस्ट डांस कर सकता हूँ, सबसे अच्छी बॉडी है मेरी, सबसे बड़ी हिट रही है मेरी। तो अगर ऐसा आपका मेकअप, मेंटल मेकअप है, और ये इंडस्ट्री बहुत कंपेटिटिव है, ऐसी चीज़ मेरे जैसे एक्टर्स के साथ होंगी ज़रूर। ऐसे कि जैसा मैं हूँ वैसा डायना भी है, उसने भी 4 साल लगा लिए। तो इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटल मेकअप एंड इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री दैट यू आर इन, यू नो समटाइम्स इट कैन क्लैश, यू नो, एंड यू एंड अप डूइंग व्हाट यू डू, यू डोंट प्लान इट, इट जस्ट हैपेंस।
बात क्या है, बात क्या है, क्यों जिंदगी का हाल मुहाल हुआ है, बात क्या है, बात क्या है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि 1/2 जो फिल्म थी आपकी और जिसे आपने को प्रोड्यूस भी किया था, उसकी नाकामी से आप इतने निराश थे कि कुछ वक्त का ब्रेक चाहते थे?
I wouldn't say that pushed me to take a break, no. Of course, disappointment thi jab koi bhi film na chale, chahe jo maine produce ki hai, jisme just act kiya hua hai. That's always a disappointment when it doesn't work. Par kya usi ne mujhe push kar diya 2 saal ka break lene? I don't know. It was ek cheez nahi hai. I think it's a collection of things. Jaise maine aapko kaha essentially jo maine pehle aapko kaha, this is mainly more that than one particular film.
Abhay, aapka sambandh jis parivar se hai, wahan se ऑलरेडी 3 मेल एक्टर्स पहले ही आ चुके थे और आप चौथे रहे, तो क्या ये बस माहौल का असर था कि आप इस ओर मुड़ गए और करियर शुरू हो गया, या कुछ और करने का आपने कभी सोचा था पहले?
यू नो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज यू वुड थिंक कि क्योंकि मैं फिल्मी बैकग्राउंड से हूँ इसलिए मुझे एक्टर बनने का मौका मिला. वाइल दैट्स ट्रू, मौका मुझे मिला क्योंकि मैं एक्टिंग बैकग्राउंड से हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, मोस्ट फैमिलीज़ ज़्यादातर अपने बच्चों को कह देते हैं कि एक्टिंग नहीं करनी है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो. एक्टिंग कौन करता है? छी, है ना, वो है एक एटीट्यूड. वो एटीट्यूड था नहीं मेरे घर में, बट बीइंग क्लासिक मिडिल क्लास इंडियंस, हमेशा ये कहा था कि हाँ हाँ बेटा, एक्टिंग करनी कर लेना, लेकिन अगर डॉक्टर बनना हो या इंजीनियरिंग करनी हो सोच ले.
अच्छा, तो आपने इस सलाह पर गौर फरमाया?
मेरे अंदर ये था कि मुझे एक्टिंग बहुत पसंद थी. मुझे याद है 5 या 6 साल की उम्र से ही मैंने थिएटर शुरू कर दिया था स्कूल में. अब क्योंकि वो माहौल था या एक अंदर का ही एक डिज़ायर था पहले से, ये मुझे नहीं मालूम. बाय द टाइम आई वॉज अ टीनेजर, मैंने हमेशा बोला कि मुझे एक्टर नहीं बनना है, क्योंकि हमेशा से ये ग्रांटेड था कि मैं बड़ा होकर एक्टर बनूंगा. That I didn't like, so I actually denied being an actor for the longest time. But at 19, when I was in college, I realized, you know, I went to art school. I used to like drawing. My story was banata tha us umar mein, to mujhe sacha chalo graphic design karte hain, aur kya karna hai. But mera dil nahi raha usme. Mera dil hamesha keh raha tha mujhe ki nahi, acting. So what agar logo ko lage ki tujhe privilege ki wajah se mauka mila hai? So what agar logo ka ye shak, ye prediction sahi aaya ki tu bada hoke actor banega? It matters what you want, not what other people think. And that's when I decided, okay, I really want to act. Chahe logo ko lage ki meri privilege se main kar raha hu ye ya meri talent ki wajah se kar raha hu ye, mujhe ye karna hai. Aur tab maine phir theater shuru kiya in college. Kudiye jo tu single hai gabru, ready to mingle hai. Kudiye jo tu single hai gabru, ready to mingle hai. Kudiye jo tu single hai gabru. अभय,
आपने कहा कि सिर्फ परिवार की वजह से एक्टिंग में आना नहीं हुआ, और आपके साथ एक और बात अलग रही कि देओल फैमिली से आए एक्टर्स ने भले ही रोमांस किया हो, लेकिन एक्शन उनकी इमेज से एकदम चिपक सा गया और पूरे करियर में चलता रहा, जबकि आपने शुरुआत एकदम सोचा ना था जैसी इम्तियाज़ अली की फिल्म से की. तो क्या ये एक सोचा समझा कदम था कि आप उस एक्शन हीरो के साये से छुटकारा पा कर ही रहेंगे?
मैंने पहले यही सोच रखा था कि मैं वो करूँगा जो मुझे करना है. और मुझे क्या करना है, मुझे क्या पसंद है, कौन सी फिल्में मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, कौन सी स्क्रिप्ट मुझे पसंद आई हैं, हमेशा उनमें एक ही कॉमन लिंक था और वो थी रिलेटेबिलिटी. लार्ज देन लाइफ जब भी मैंने कुछ देखा या पढ़ा मुझे वो अच्छा नहीं लगा है. यू नो, हीरो 10-20 लोगों को मार के हीरोइन जीत जाता है और डांस भी अच्छा करता है, रोमांस भी करता है, ड्रामा भी करता है. इसमें मेरी रिलेटेबिलिटी थी नहीं, क्योंकि ऐसे लोग कहाँ दिखते हैं आपको ज़िंदगी में, दे डोंट एग्जिस्ट. बट जहाँ पे मुझे एक असली इंसान दिखा, एक बंदा जिसके आसपास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो जीत गया अपने मसल्स के दम पे, नहीं शायद दिमाग की वजह से या दिमाग और मसल की कॉम्बिनेशन के, जो भी रिलेटेबल है, जो भी मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये मैं देख सकता हूँ कि ज़िंदगी में ज़रूर हुआ है और उसके साथ एंटरटेनिंग भी हो, ऐसा नहीं है कि एंटरटेनमेंट ना हो, वो फिल्में मुझे ज़्यादा पसंद आई, वो स्क्रिप्टें मुझे ज़्यादा पसंद आई. और वो हमेशा मेरा डिज़ायर रहा है शुरू करने से पहले ही कि मैं ऐसी फिल्में करूं, हालांकि उस वक्त ऐसी फिल्में बन नहीं रही थी. बट आई सपोज इग्नोरेंस इज ब्लिस, मुझे लगा कि नहीं कोई तो होगा, एंड देन आई सेट आउट लुकिंग फॉर देम एंड आई फाउंड देम.
सच बताइएगा, आपकी बातें सुनकर मुझे जरा शक हो रहा है कि आपने धर्मेंद्र साहब और सनी देओल की फिल्में देखी होंगी खुद.
आई थिंक आउटसाइड ऑफ दीज फिल्म मेकर्स, देयर वाज द ओनली फिल्म्स आई सॉ. पप्पा की फिल्में, मेरे ताई जी जिनको मैं पप्पा कहता हूँ, भैया की फिल्में, दोज आर दी ओनली फिल्म्स एंड आई वुड वॉच आउटसाइड ऑफ फॉरेन फिल्म्स एसेंशली, यू नो. सो क्योंकि वो मेरी फैमिली की फिल्में थी तो ऑटोमेटिकली एक इन्वेस्टमेंट था उनमें, एक इंटरेस्ट था उनमें. बट हमेशा ये डर था कि मैं तो नहीं हूँ वैसा, अब मैं कैसे करूँ, क्योंकि हाँ मेरी भी इंडिविजुअलिटी है ना. और ये इंडस्ट्री, मुझे मालूम था, मैं समझ गया था कि ये इंडस्ट्री इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट नहीं करती है, ये इंडस्ट्री इमेज को रिस्पेक्ट करती है. तो अगर इमेज ये है, एक्शन इमेज है, तो फिर एक्शन करो। आप कैसे रोमांस कर सकते हो, आप कैसे विलन का रोल कर सकते हो, आप तो हीरो हो। तो मुझे वो मालूम था पहले से कि ये थोड़ा एक बैटल होने वाला है इंडिविजुअलिटी के लिए।
सो इसीलिए आपने अपने लिए एक नॉट सो माचो बॉय नेक्स्ट डोर टाइप रोल्स के लिए मुनासिब समझा खुद को।
इट्स नॉट दैट आई वांट अ बॉय नेक्स्ट डोर इमेज एंड इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट टू डू एन एक्शन फिल्म। आई वांट टू डू एन एक्शन फिल्म। मेरी इमेज जैसे मैं पढ़ रहा हूँ लोगों को, जैसे लोग मुझको देखकर रिएक्ट करते हैं और जो लोग मुझे कहते हैं, वो ये है कि समवन हु एक्सपेरिमेंट्स, समवन जो कुछ अलग करता है, जो चांस लेता है, जो नए लोगों के साथ भी काम कर लेता है। तो आई लाइक दैट इमेज। आई डिडंट ट्राई टू, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश की कि वैसे मेरी इमेज बन जाए। मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि कोई इमेज ही ना बने। मेरी इच्छा ये हमेशा रही है कि मुझे एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले। तो अगर ऐसी एक इमेज बन जाए जहाँ पे मुझे एक्सपेरिमेंटेशन करने का ज़्यादा मौका मिलेगा, क्यों ना, क्योंकि वो इमेज फिर हेल्प कर रही है मुझे। ऐसी इमेज ना बन जाए जहाँ पे मुझे वो जो मैं करना चाहता हूँ मुझे ना मिले, वो इमेज नहीं चाहिए थी।
आँखों का है धोखा ऐसा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। आँखों का है धोखा ऐसा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार।
आप खुद भले एक फिल्मी परिवार से आते हो, अभय और धर्मेंद्र साहब की तो जो पॉपुलैरिटी रही है वो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये सवाल पूछना जायज़ लगता है कि इस इंडस्ट्री में जहाँ स्टार्स का सिक्का चलता है, एक एक्टर के लिए अपनी जगह बनाना एक चैलेंजिंग जर्नी होती है या फिर फ्रस्ट्रेटिंग ज़्यादा है?
आई थिंक दैट मेरा मानना यही है कि एक्टर एक्टर होता है। आप एक्टर को स्टार बना सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप स्टार को एक्टर बना सकते हो। यू नो, यू नीड लिटिल बिट ऑफ टैलेंट एंड अ लॉट ऑफ मार्केटिंग एंड अ लॉट ऑफ मनी। स्टारडम खरीदी जा सकती है। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो आप स्टारडम खरीद सकते हो। अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपने आपके पास वो पैसे नहीं हैं स्टार बनने के लिए, तो आप एक्टर के हिसाब से रिकग्नाइज फिर भी होंगे। यू नो आई मीन, ऐसा हुआ है हमारे स्टार्स के साथ, दे वर रिकग्नाइज एज एक्टर्स। एंड देन उसके बाद में विद मीडिया कम्बाइंड विद द पीपल यू वर्क विद, आप किसके साथ काम कर रहे हो, आपका प्रोड्यूसर कौन है, आपकी एक्ट्रेस कौन है, आपका डायरेक्टर कौन है, ये प्लान्ड होता है। देन यू गो अप बाय एसोसिएशन। यू नो आई मीन, ये गेम मैंने कभी खेला नहीं है, ये गेम मैंने बचपन से देखा हुआ है। तो आई हैव ऑलवेज सेड नहीं, यू नो आई डोंट वांट टू प्ले दैट गेम, आई वांट टू वर्क विद समवन बिकॉज़ आई वांट टू वर्क विद दैट पर्सन।
तो आपको लगता है माहौल कुछ बेहतर हुआ है पहले से या बिगड़ गया है आपके ख्याल से, और ज्यादा मुश्किल हो गया है किसी आउटसाइडर के लिए अपनी जगह बनाना?
अभी वो माहौल और भी बढ़ते जा रहा है। इट्स बिकम इवन मोर एंड मोर अबाउट मनी, लेस एंड लेस अबाउट क्रिएटिविटी। सो इस माहौल में आइदर यू बिकम द स्टार और यू बिकम अ कैरेक्टर एक्टर, देयर इज नो इन बिटवीन अनफॉर्चुनेटली। You know, either you be a star or a character actor. There's no like, okay, he is an actor. He may not be trying to be a star, but he can definitely support a movie. He can be a solo hero. No, you just gotta make sure that you become a star for that film to come again.
तो आप खुद को इस तरह की मानसिकता का शिकार कहेंगे क्या?
I don't think, I've been very privileged that way. मेरी family backing का एक support रहा है और मैंने खुद वो game कभी खेली नहीं है। तो और साथ में मैंने जाके ढूंढा हुआ है नए डायरेक्टर्स को, नए आर्टिस्ट को, नए राइटर्स को, और मैंने वो चांस लिया है। तो लकीली आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है। तो आई एम होपिंग कि मुझे कभी ये स्टार गेम खेलने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, पहले से ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ेगी, पहले से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट डालनी पड़ेगी फिल्म को माउंट करने के लिए, ज़रूर। आई कांट बी द सेम आई वॉज 5 years अगो, क्योंकि मार्केट भी चेंज होती जा रही है ना। बट आई स्टिल डोंट वांट टू प्ले इट लाइक अ स्टार गेम। वो मैं कंपेटिटिव नहीं हूँ, मैंने कभी कम्पीट किया नहीं लोगों के साथ, और स्टारडम में मुझे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही है। पर अगर थोड़ा बहुत करना पड़ेगा फिल्म को सपोर्ट देने के लिए तो क्यों नहीं, क्योंकि वैसे ही फिल्म को सपोर्ट मिल रहा है। बट ये माहौल जो क्रिएट किया ना, इट बिकम सेल्फ सर्विंग आफ्टर अ वाइल एंड इट्स डिस्ट्रक्टिव।
ये थे अभय देओल, और अब आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कश्मीर की समस्या का जिक्र करते हुए कहा है कि कश्मीर में चाहे किसी नौजवान की जान जाए या किसी सुरक्षाकर्मी की, ये देश का ही नुकसान है। सीरिया पर नजर रखने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तरी सीरिया में तुर्की की बमबारी में कम से कम 35 लोग मारे गए हैं।
प्रमुख समाचार सुनाया दिलनवाज पाशा ने, और 1.5 घंटे बाद घंटा चक्कर में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।